एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार के आज के अंक में हम गोता लगा रहे हैं गुजराती साहित्य के एक महासागर में, एक ऐसी रचना जिसने न सिर्फ एक भाषा को बल्कि एक पूरे युग को परिभाषित किया।
जी हाँ, हम बात करें हैं गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी जी की कालजयी कृति सरस्वती चंद्र की।
त्रिपाठी जी मतलब 1855 से 1907, वो सिर्फ लेखक नहीं थे, उन्हें तो गुजराती उपन्यास का पितामह कहा जाता है।
बिल्कुल, और वो उस पंडित युग के प्रतीक थे।
पंडित युग, हाँ, विद्वानों का युग, जब साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को राह दिखाने का एक जरिया था।
सही कहा, त्रिपाठी जी ने तो वकालत जैसा पेशा छोड़कर पूरी तरह साहित्य को अपना लिया, और उनकी लेखनी में ना आपको भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत और जो पश्चिमी विचार थे उस समय के,
जैसे स्वच्छंदतावाद, उपयोगितावाद,
हाँ, उन सबका एक बहुत ही अनूठा संगल मिलता है।
और सरस्वती चंद्र तो इसी सोच का जैसे एक जीता जागता प्रमाण है। ये सिर्फ उपन्यास नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक विचार ग्रंथ कह सकते हैं।
चार खंडों में
हाँ।
और 15 साल लगे लिखने में, 1887 से 1901 तक।
जी, और ये दिखाता है 19वीं सदी के गुजरात को, एक तरफ पुराने रजवाड़े, दूसरी तरफ बॉम्बे जैसा नया शहर उभर रहा है, वो पूरा माहौल है इसमें।
तो आज हम कोशिश करेंगे इस विशाल कृति की कहानी को, इसके जो जटिल पात्र हैं उनके मन की यात्रा को और इसके गहरे संदेशों को समझने की।
चलिए शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में दो लोग हैं, सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी। कुमुद,
जिनके नाम पर ही शीर्षक है।
हाँ, उनकी सगाई हुई है पर वे कभी मिले नहीं हैं। उनका प्यार पनपता है खतों के जरिए।
अच्छा, सिर्फ खत? ये तो बड़ी अनोखी बात है।
अनोखी और गहरी भी। ये कोई आम प्रेम पत्र नहीं थे, इनमें विचारों का, सपनों का, एक दूसरे की बौद्धिक समझ का आदान प्रदान था। वो एक दूसरे में अपना सच्चा साथी पाते हैं बिना मिले ही।
एक बौद्धिक और भावनात्मक रिश्ता।
बिल्कुल, पर यही कहानी का पहला, कह सकते हैं, दुखद मोड़ आता है।
हाँ, सरस्वती चंद्र वो तो बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था ना, अमीर, पढ़ा लिखा, संस्कृत भी जानता था, पश्चिमी शिक्षा भी।
हाँ, पर आदर्शवादी भी बहुत था, और उसे अपने पिता का अविश्वास झेलना पड़ता है, जिसमें उसकी सौतेली माँ गुमान की भी भूमिका थी।
अच्छा, और ये बात उसे इतनी चुभ जाती है?
इतनी कि वो एक बहुत ही कठोर फैसला ले लेता है। वो सोचता है कि जिस आदमी का सम्मान ही नहीं रहा, वो अपनी प्रेमिका को भला क्या दे सकता है।
तो क्या करता है वो?
वो अपनी सारी दौलत, परिवार, घर, सब कुछ छोड़ देता है, त्याग देता है।
सब कुछ? और कुमुद को बताता भी नहीं?
बस एक खत छोड़कर चला जाता है। सोचिए जरा, कुमुद पर क्या बीती होगी। ये उसके आदर्शवाद का एक शायद थोड़ा अपरिपक्व पहलू भी था।
जाहिर है, कुमुद के लिए तो ये वज्रपात जैसा रहा होगा, बिचारी।
बिल्कुल, खुद को ठुकराया हुआ पाकर दुखी, बेबस, और फिर परिवार वाले उसकी शादी तय कर देते हैं।
हाँ, वो मंत्री बुद्धिधन के बेटे से, प्रमाद धन से, जो बिल्कुल उसके लायक नहीं था।
बिल्कुल नहीं, और यहीं से उपन्यास वो बड़ा सवाल उठाता है, प्रेम का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दो लोगों की खुशी है, या इसका कोई बड़ा सामाजिक मकसद भी है?
प्रेम बनाम धर्म, व्यक्तिगत ख्वाहिश बनाम सामाजिक कर्तव्य, ये द्वंद्व तो पूरी कहानी में चलता होगा फिर।
हाँ बिल्कुल, चलिए सरस्वती चंद्र को थोड़ा और समझें, वो वाकई बड़ा पेचीदा किरदार है।
एक तरफ इतना ज्ञान, शेक्सपियर से उपनिषद तक, भारतीय पश्चिमी विचार, सब कुछ।
हाँ, पर दूसरी तरफ बहुत ज्यादा सोचता है, आत्मविश्लेषण करता है, फैसले लेने में हिचकता है कई बार। उसका वो घर छोड़ना, इरादा नेक हो शायद, पर नतीजा कुमोद के लिए अपार दुख।
हाँ, उसका सफर असल में इसी आत्मकेंद्रित आदर्शवाद से निकलकर एक परिपक्व इंसान बनने का है।
जी, जब वो नवीन चंद्र बनकर घूमता है, दुनिया देखता है, ठोकरें खाता है, जैसे वो जहाज टूटने वाला वाक्या,
हाँ,
सत्ता की राजनीति देखता है, तब उसे असलियत समझ आती है।
और वो सीखता है कि असली त्याग भागना नहीं बल्कि दुनिया में रहकर निस्वार्थ काम करना है।
बिल्कुल, और यहीं से वो कल्याण ग्राम का विचार आता है।
कल्याण ग्राम, एक आदर्श गांव बनाने का सपना, जहां वो अपने ज्ञान और प्रेम को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके।
हाँ, ये उसके चरित्र के विकास का शिखर है।
अब कुमुद की बात करते हैं, कहानी की नायिका पर दुखद नायिका।
हाँ, पर वो सिर्फ बेचारी नहीं है, त्रिपाठी जी ने उसे बहुत शक्ति दी है। वो उपन्यास का नैतिक केंद्र है, शालीन है, बुद्धिमान है, और उसका पूरा जीवन जैसे सरस्वती चंद्र के प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है।
और जब उसकी शादी प्रमादन से हो जाती है तब
उसकी यात्रा सहन शक्ति की एक मिसाल बन जाती है। वो चुपचाप सब सहती है, अपनी गरिमा नहीं खोती, मन में सरस्वती चंद्र के लिए जो निष्ठा है उसे बनाए रखती है।
ये पीड़ा उसे और मजबूत बनाती है शायद।
हाँ कह सकते हैं। वो पति को सुधारने की कोशिश भी करती है, पर जब प्रमादन का अत्याचार बढ़ता है तो वो अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आध्यात्मिकता में सहारा ढूंढती है।
और सरस्वती चंद्र के लिए उसका प्रेम, क्या वो बदलता है?
हाँ, वो रोमानी चाहत से ऊपर उठकर एक गहरे आध्यात्मिक साथीपन में बदल जाता है। अंत में वो भी समाज सेवा के उसी आदर्श को अपनाती है। वो उस भारतीय स्त्री का प्रतीक बन जाती है जो अपनी निजी पीड़ा को भी समाज की शक्ति बना सकती है।
वाह, ये तो कमाल का चित्रण है। अच्छा, सहायक किरदारों में बुद्धिधन का जिक्र हुआ था।
हाँ, बुद्धिधन, रत्ननगरी के मंत्री, जैसा नाम वैसा काम, बहुत बुद्धिमान, व्यवहारिक,
दुनियादारी समझने वाले।
जी, राजनीति जानते हैं पर न्याय से काम करना चाहते हैं। वो सरस्वती चंद्र के लिए गाइड, एक पिता जैसे बन जाते हैं, उसके आदर्शों को जमीन पर उतारने में मदद करते हैं।
और दूसरा सिरा है प्रमादधन।
हाँ, कुमुद का पति, बुद्धिधन का बेटा, कहानी का विलन कह सकते हैं, पर शायद वो बिगड़ी परवरिश का नतीजा ज्यादा है।
घमंडी, अज्ञानी, नशेड़ी।
बिल्कुल, वो पुरानी खत्म होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक है, और उसका कुमुद के साथ जो बर्ताव है वो उस समय की सामाजिक बुराइयों को, खासकर औरतों के दमन को उजागर करता है। कुमुद की कहानी और दर्दनाक हो जाती है उसकी वजह से।
कहानी चार खंडों में आगे बढ़ती है। पहले खंड में क्या होता है मुख्य रूप से?
पहले खंड बुद्धिधन नू कारभार में सरस्वती चंद्र और कुमुद का पत्र प्रेम दिखाया गया है। फिर सरस्वती चंद्र का परिवार से झगड़ा, उसका घर छोड़ना, और कुमुद की प्रमादधन से शादी तय होना।
और दूसरा खंड?
गुणियल नू कुटुंब जाड़, ये कुमुद के विवाहित जीवन के अंधेरे को दिखाता है, ससुराल में शक, जुल्म, और इसी बीच सरस्वती चंद्र, जो अब नवीन चंद्र है, उसका जहाज टूटता है, वो एक आश्रम में पहुंचता है।
और फिर?
फिर किस्मत का खेल, कुमुद पास के मंदिर में जाती है, नदी के दो किनारों पर वो एक दूसरे को पहली बार देखते हैं।
पहली बार? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी पीड़ा हुई होगी दोनों को।
बहुत, और इससे प्रमादधन का शक और बढ़ जाता है। ये खंड कुमुद की खामोश सहन शक्ति पर केंद्रित है।
और तीसरा खंड रत्ननगरी नू राजतंत्र, इसमें कहानी राजनीति की तरफ मुड़ जाती है।
हाँ, सरस्वती चंद्र नवीन चंद्र के रूप में रत्ननगरी पहुंचता है, बुद्धिधन उससे मिलते हैं, उसकी योग्यता पहचानते हैं और अपना सलाहकार बना लेते हैं, ये जाने बिना कि वो कौन है।
अच्छा,
वो राज्य के सुधारों में लग जाता है। उधर कुमुद की जिंदगी में एक और तूफान आता है, प्रमादधन उसे सरेआम बेइज्जत करके छोड़ देता है।
हे भगवान।
वो आत्महत्या की कोशिश करती है, पर कुछ साध्वियां उसे बचा लेती हैं और सुंदरगिरी पर्वत पर एक आश्रम में ले जाती हैं। दुनिया समझती है कुमुद मर गई।
क्या उतार चढ़ाव है कहानी में। और फिर चौथा खंड सरस्वती नू चंद्रमंडल।
हाँ, ये सुंदरगिरी का आश्रम ही जैसे कहानी का संगम स्थल बन जाता है। सारे पात्र, सारे धागे यहीं आकर मिलते हैं। सरस्वती चंद्र को पता चलता है कि कुमुद जिंदा है, वो आश्रम पहुंचता है,
आखिरकार मिलन होता है।
हाँ, पर अब हालात बिल्कुल अलग हैं। उसका परिवार भी आ जाता है, प्रमादन मर चुका है, अब समाज, परिवार सब चाहते हैं कि सरस्वती चंद्र और कुमुद शादी कर लें।
यही तो स्वाभाविक लगता है इतनी मुश्किलों के बाद।
पर त्रिपाठी जी कहानी को एक अलग, ज्यादा ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। सरस्वती चंद्र और कुमुद ये फैसला करते हैं कि अब उनका शादी करना स्वार्थ होगा।
मतलब?
वो अपने व्यक्तिगत प्रेम को एक आध्यात्मिक साझेदारी में बदलते हैं। उनका लक्ष्य बन जाता है समाज सेवा।
और यही कल्याणग्राम का विचार साकार होता है।
बिल्कुल, एक आदर्श गांव बनाना, भारत के लोगों का उत्थान करना, उनकी निजी प्रेम कहानी एक राष्ट्रीय मिशन में बदल जाती है।
ये तो वाकई एक बहुत ही गहरा और अलग अंत है। प्रेम की पराकाष्ठा जैसे समाज सेवा बन जाती है।
हाँ, और उपन्यास की शैली भी इसी गंभीरता को दर्शाती है। कहानी भी है और बीच बीच में लंबे दार्शनिक विचार विमर्श भी।
वो पंडित युग वाली बात, कथावाचक सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वो समझा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है।
जी, भाषा भी देखें तो बहुत राजसी, औपचारिक, संस्कृत निष्ठ, जैसे ज्ञान का सागर, आज पढ़ने में शायद थोड़ी भारी लगे पर भव्यता है उसमें।
प्रतीकों का भी जिक्र करना चाहिए। समुद्र शायद जीवन की उथल पुथल।
हाँ, संसार का प्रतीक, फिर सुंदरगिरी का आश्रम, वो जैसे एक ऊंची चेतना का स्थान जहाँ शांति है, जहाँ हल मिलते हैं।
और कल्याणग्राम भविष्य का आदर्श, सेवा, ज्ञान, न्याय पर आधारित।
बिल्कुल, अब अगर हम मुख्य विषयों को समेटें तो सबसे पहले वही बात आती है, धर्म बनाम प्रेम।
और उपन्यास का हल है दोनों का समन्वय, निस्वार्थ सेवा के जरिए। प्रेम को त्यागना नहीं, उसे बड़ा बनाना।
सही। फिर परंपरा बनाम आधुनिकता। उपन्यास ना तो आंख मूंद कर पश्चिम की नकल करने को कहता है, न ही पुरानी दकियानुसी बातों को मानने को।
एक संतुलन की बात है, विवेकपूर्ण संश्लेषण।
जी। तीसरा, त्याग का मतलब। सच्चा त्याग दुनिया से भागना नहीं,
बल्कि दुनिया में रहकर दूसरों के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना है। सरस्वती चंद्र यही सीखता है।
बिल्कुल। फिर पढ़े लिखे वर्ग की जिम्मेदारी ज्ञान का उपयोग समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए करना। कल्याण ग्राम इसी का प्रतीक है।
और हाँ, सामाजिक बुराइयों की आलोचना भी, खासकर महिलाओं की स्थिति, शादी के अंदर उनका दमन, घरेलू हिंसा।
हाँ, भ्रष्ट शासन, ये सब उपन्यास में खुलकर दिखाया गया है।
इसे पढ़ते हुए या सुनते हुए मन पर असर तो बहुत गहरा पड़ता होगा। एक उदासी भी और एक तरह का सम्मान भी उन पात्रों के लिए।
हाँ, कुमुद की खामोश पीड़ा, सरस्वती चंद्र की अंदरूनी लड़ाई, ये सब महसूस होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी में क्या जरूरी है, प्यार, सफलता या फर्ज, निजी खुशी या समाज सेवा।
और शायद इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है ना, क्योंकि ये सवाल तो हमेशा हमारे सामने रहते हैं।
बिल्कुल। एक सार्थक जीवन कैसे जिएं, अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों में तालमेल कैसे बिठाएं, दुनिया को बेहतर कैसे बनाएं।
ये उपन्यास जैसे दिखाता है कि इंसान की असली लड़ाइयां बाहर नहीं, मन के अंदर होती हैं।
हाँ, वो मन के भीतर का द्वंद्व।
तो कह सकते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम व्यक्तिगत सीमाओं को लांघकर समाज की निस्वार्थ सेवा के विशाल फलक तक पहुंच सकता है।
और यह हमें प्रेरणा देती है कि कैसे निजी दुख और संघर्ष को भी सामूहिक भलाई और एक बड़े उद्देश्य के लिए शक्ति में बदला जा सकता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।